ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ रहे हैं हम लोग भागवत महापुराण से पांचवें स्कंद अध्याय चार, भगवान ऋषभ देव के लक्षण, श्लोक संख्या पांच। विदित अनुरागम आपौर प्रकृति जनपद राजा नाभि आत्मजम समय सेतु रक्षाय अभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरु दिव्या विशालायां प्रसन्न निपुरेण तपसा समाधि योगेन नरनारायण आख्यम भगवन्तं वासुदेवं उपासिनः कालेन तत्महिमानं अवाप्य। विदिता अनुरागम अपौर प्रकृत जनपद राजा नाभिरात्मज समय सेतुरक्षायां अभिषिच्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरु दिव्या विशालायां प्रसन्न निपुरेण तपसः समाधि योगेन नर नारायणाख्यम भगवन्तं वासुदेवं उपासिनः कालेन तन्महिमान वाप। अनुवाद और तात्पर्य, उसके पहले शब्द का अर्थ। विदिता भली भांति जान करके, अनुरागम अनुराग को, लोकप्रियता को, आपौर प्रकृति ही समस्त नागरिकों तथा प्रशासकों के बीच, जनपद समान जनों की सेवा की इच्छा से, राजा नाभि आत्मजम अपने पुत्र को, समय सेतु रक्षायाम धार्मिक जीवन के वैदिक नियमों के अनुसार जनता की रक्षा करते हुए, अभिषिच्या राज्याभिषेक करके, ब्राह्मणेषु ब्राह्मणों को उपनिधाय देकर सौंप कर, सह साथ मेरु दिव्या अपनी पत्नी मेरु देव के साथ, विशालायाम बद्रिकाश्रम में प्रसन्न निपुणेन अत्यंत संतोष एवं निपुणता के साथ करते हुए, तपसा तपस्या से समाधि योगेन पूर्ण समाधि से नरनारायणाख्यम नर नारायण नामक भगवंतम भगवान को, वासुदेवम वासुदेव को उपासिना उपासना करते हुए। कालेना काल क्रम से तत्महिमानम महिमामय धाम वैकुंठ लोक को अवाप्य प्राप्त किया। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद। श्री प्रभुपाद की जय। राजा नाभि ने समझ लिया था कि उनका पुत्र ऋषभदेव नागरिकों प्रशासकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय है। सिक्योरिटी माता जी लोग बोलो कि मुझे अभी बोलने दो, बाद में बोलना। अतः उन्होंने वैदिक धर्म सिद्धांत के अनुसार जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथों में सौंप दिया जो शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन कर सके। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ हिमालय पर्वत स्थित बद्रिकाश्रम में गए और वहां पर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक एवं निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने कृष्ण के ही अंश रूप श्री भगवान नर नारायण की उपासना की। अतः काल क्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त हुआ। तात्पर्य जब महाराज नाभि ने देखा कि जनता तथा राज्य अधिकारियों के बीच उनका पुत्र अत्यंत लोकप्रिय हो गया है तो उन्होंने उसे राज्य सिंहासन पर आसीन करने का निश्चय किया। साथ ही वे अपने पुत्र को बुद्धिमान ब्राह्मणों के हाथों में सौंपना चाहते थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राजा को बुद्धिमान ब्राह्मणों की देखरेख में वैदिक नियमों के अनुसार राज्य करना होता था, जिससे वे मनुस्मृति तथा इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों के अनुसार सलाह दे सके। राजा का यह कर्तव्य है कि वह वैदिक नियमों के अनुसार शासन चलाए। वैदिक नियमों के अनुसार समाज चार वर्गों में विभाजित है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग स। समाज को इस प्रकार विभाजित करने के बाद यह राजा का कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार वैदिक नियमों का पालन करे। ब्राह्मण को चाहिए कि वह जनता को ठगे बिना ब्राह्मण का कर्तव्य निभाए। बिना पात्रता के किसी को ब्राह्मण कहलाने का अधिकार नहीं है। यह राजा का पुनित कर्तव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति वैदिक नियमानुसार अपना व्यवसायिक कर्तव्य निभाए। साथ ही जीवन के अंत समय में वैराग अनिवार्य है। महाराज नाभि राजा रहते हुए भी गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए और अपनी पत्नी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए जहां नर नारायण विग्रह की उपासना की जाती है। प्रसन्न निपुणेन तपसा से सूचित होता है कि राजा ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक तथा पटुता के साथ तपस्या की। सम्राट होते हुए भी अपने सुविधामय जीवन का परित्याग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। बद्रिकाश्रम में कठिन तपस्या करते हुए भी वे परम प्रसन्न थे और सारा कार्य दक्षतापूर्वक करते रहे। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत समाधि योग में पूर्ण निमग्न रहकर और सतत वासुदेव कृष्ण का ध्यान करते हुए महाराज नाभि ने जीवन के अंतिम काल में सफलता प्राप्त की और वैकुंठ के
भागी हुए। यही वैदिक जीवन पद्धति है। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकर भगवान के धाम जाना है। इस प्रसंग में तन महिमानम अवापह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री स्वामी का कहना है कि महिमा का अर्थ जीवन से मुक्ति है। अतः हमें इस जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। यही जीवन मुक्ति है। श्री वीर राघव आचार्य लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में जीवन मुक्त अर्थात इस शरीर में ही जो मुक्त हो चुका है उसके 8 लक्षण बताए गए हैं। अपहत पाप अर्थात वह समस्त पाप कर्मों से अलग रहता है। जब तक मनुष्य माया के चंगुल में रहता है वह पाप कर्म में लगा रहता है। भगवत गीता में ऐसे मनुष्यों को दुष्कृत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे सदैव पाप कर्म में रत रहते हैं। जो जीवन मुक्त है वह कभी पाप नहीं करता। वे विचार, मद्यपान, मांसाहार तथा दूत क्रीड़ा यही पाप कर्म है। जीवन मुक्त का दूसरा लक्षण है बिजर अर्थात उसे वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। तीसरा लक्षण है विमृतु अर्थात वह एक शरीर से अधिक शरीर धारण नहीं करता क्योंकि उनकी मृत्यु ध्रुव है। दूसरे शब्दों में वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। विशोक अर्थात वह भौतिक शोक था हर्ष के प्रति उदास रहता है। विजिक्षक जिसका अर्थ है कि उसे भौतिक सुख की कामना नहीं रहती। अभिपात अर्थात वह अपने परम प्रिय ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहता। सत्य काम जिसका अर्थ है कि उसकी समस्त आकांक्षाएं परम सत्य श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होती है। वह सत्य संकल्प होता है, उसकी सत्य कामनाओं को पूरा करने वाले श्री कृष्ण हैं। प्रथम जो भौतिक लाभ के लिए वह कोई इच्छा ही नहीं रखता और यदि करता भी है तो ईश्वर उन्हें पूर्ण करते हैं, इसलिए उसे सत्य संकल्प कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि महिमा का अर्थ है वैकुंठ लोक, जो वापस जाना है। श्रील सुखदेव का कथन है कि महिमा का अर्थ है कि भक्त श्री भगवान के गुणों को प्राप्त कर लेता है, उसे सद्धर्म अर्थात समगुण कहते हैं। जिस प्रकार कृष्ण तो जन्मते हैं और न मरते, उसी प्रकार उनके जो भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं वे फिर इस संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। एक माइक में कुछ गड़बड़ी है, आप लोग सुनाई पड़ता है? गड़बड़ है ना, बहुत ज्यादा ये निकल रहा है, मीठा नहीं आ रहा ना। कहां गया माइक वाला? आवाज आ रहा है लेकिन मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। इधर आओ। इसमें इको है क्या? हैं? हरे कृष्णा। ऐसे ही बोलूंगा तो चलेगा, थोड़ा कम या तो कम करो तो खूब ज्यादा करो। दूसरा वाला माइक कहाँ है? लेकिन फट रहा है आवाज, थोड़ा देखो उसमें कुछ। अब ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुर्जिर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् शोलम
कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेमच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाय जयति कृष्ण चैतन्य कलिप्रकटे व्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे So they asked me to speak in Hindi. So Raghava is translating for you. Or if you want to learn Hindi, you can sit here. Backside. You can see other mic is there. Hare Krishna. So hum log भगवान ऋषभ देव के संबंध में एक कथा सुन रहे हैं. ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, लेकिन विशेष अर्थ है ऋषति प्राप्नोति उत्कृष्टम इति ऋषभ. परम पद को जो प्राप्त करता है उसे ऋषभ कहते हैं. दूसरा अर्थ है ऋष्यते प्राप्यते अनेन परम गति इति ऋषभ, और जिसके उपदेश से जिसके संग से सब लोग परम गति को प्राप्त कर सकें उसे ऋषभ कहते हैं. भगवान ऋषभ देव स्वयं भगवान के अंशावतार हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के अवतार हैं. वे परम गति को प्राप्त हैं और उनके उपदेश उनका आचरण लोगों को परम गति दे सकता है. उनका जो कथा है वो लोगों को परम गति तक पहुंचा सकता है, और परम गति जो है वह है वैकुंठ की प्राप्ति, वैकुंठ धाम की प्राप्ति. यहां पर इस श्लोक में चार बातें, इस गद्य में चार बातें बताई गई है. एक, भगवान ऋषभ देव को जो वहां की जनता थी, अजनाब वर्ष की जनता, राज्याधिकारी ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री इत्यादि सब लोग बहुत सम्मान करते थे, उनकी लोकप्रियता थी. इस बात को महाराज नाभी समझे. समझने के बाद क्या किए,
वो दूसरा बात बताया गया है। समझने के बाद वो उनको राजा बनाए और जाते जाते तीसरा काम किए कि ब्राह्मणों की सुरक्षता में उनको रख कर करके यहां पर कहा गया है समय सेतु रक्षाय, समय सेतु के रक्षा। सेतु मतलब ब्रिज, ब्रिज टूटने ना पाए किससे, राजा से और प्रजा से, इसका रक्षा करने के लिए। और वो ब्रिज क्या है, वो पुल क्या है, वह है समय। समय मीन्स वैदिक संस्कृति, मनुस्मृति में जो बातें बताई गई हैं वह बातें, यानी वैदिक सभ्यता संस्कृति नष्ट न होने पाए, उसका रक्षा करने के लिए वे ऋषभदेव को ब्राह्मणों की सुरक्षता में रखे। ये तीसरा कार्य किए। और चौथा कार्य किए कि अपने स्वयं अपने धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ में बद्रिकाश्रम प्रस्थान किए। तो आज हम लोग कथा में इन चार बातों पर विचार करेंगे जो कि श्लोक में बतलाया गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में आचार्यों के द्वारा श्री स्वामी विराघव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री को भली भांति प्रकाशित किए हैं तात्पर्य में। किसी राज्य को समुचित ढंग से चलाने के लिए एक समुचित राजा होना चाहिए, एक योग्य राजा होना चाहिए। यदि योग्य राजा रहेगा तो राज्य में संपन्नता रहेगी, सुशांति रहेगी, सुख रहेगा, सब कुछ रहेगा। जैसे भागवतम में वर्णन किया गया है महाराज परीक्षित और महाराज युधिष्ठिर के राज्य का वर्णन किया गया है। जय श्री गोविंदा की जय, राधा श्री हरि कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में, महाराज परीक्षित के राज्य में सब कुछ समयानुसार होता था। गायों के अस्तनों में दूध हुआ करता था। ऋतु परिवर्तन समय से हुआ करता था। पर्वतों में और समुद्रों में रत्न थे, नदियों में जल, वृक्षों में फल इत्यादि इत्यादि वर्णन किया गया है। सब लोग संपन्न थे इस प्राकृतिक संपदा को प्राप्त कर करके। क्यों? क्योंकि सुयोग्य राजा थे। किसी सुयोग्य राजा को राज्य चलाने के लिए छह वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भागवतम के छठे स्कंद में इसका वर्णन किया गया है महाराज चित्रकेतु से, पर्वत मुनि मिले थे ना चित्रकेतु से पहले। उन्होंने पूछा कि महाराज आपके राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये छह वस्तुएं ठीक तो है ना? उसमें से राजा के लिए प्रथम वस्तु जो है वह है राज्य। एक राजा को राज्य होना चाहिए। दूसरा, राजा को राज्य कोष होना चाहिए। तीसरा, राजा को मंत्री होने चाहिए। चलिए चौथा हो गया। पहला होना चाहिए राजा को गुरु होना चाहिए, पहला। पांचवा, नागरिक होने चाहिए। और छठा, अधिकार होना चाहिए। तब छह वस्तुएं रहेगी तो वह राज्य संपन्न पूर्वक चलेगा, भली भांति चलेगा। छह में से एक भी गड़बड़ हो गया तो गया। उसमें से पहला है गुरु। बहुत जरूरी है। राजा को एक राज्य गुरु होना बहुत जरूरी है। जैसे भगवान श्री राम स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि थे उनके राजगुरु। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। उसके बाद राजा को राज्य होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए। राज्य को प्राप्त करने के लिए, टेरिटरी को प्राप्त करने के लिए राजा लड़ाई करते थे, उसके लिए सैनिक होने चाहिए। और यह सब प्रजा के प्रसन्नता के लिए, प्रजा होनी चाहिए, प्रजा के रक्षा में धन चाहिए, धन होना चाहिए, और राजा को अधिकार होना चाहिए। आजकल अंग्रेजों का डिक्टेटर है, खराब शब्द बोलते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब दुरुपयोग करना नहीं, सदुपयोग करना। आजकल के राजा में कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधिकार नहीं, बिना अधिकार के बैठाए गए हैं राज सिंहासन पर। यदि देखा जाए तो 6 में से 1 भी नहीं है। आजकल के प्रधानमंत्री जो राजा हैं, उनके पास कौन गुरु है? गुरु कोई है? भागवतम में वहां पर वर्णन किया गया कि एक भी अवयव कम हो जाए तो राज नहीं चल पाएगा। पहला अवयव है गुरु होना। गुरु कौन है मनमोहन सिंह के? सोनिया गांधी है? अंधा गुरु और अंधा चेला, दोनों नरक के गामी। तो गुरु नहीं है, राज्य कोष नहीं है, नहीं राज्य, राज्य कहां है? डिवाइड हो रहा है टेली। मंत्री नहीं है, मंत्री जो सलाह दे, वो मंत्री सलाह देते हैं कि ये स्कैम करो, वो स्कैम करो, वो स्कैम करो, हैं? स्कैम्पिस्ट मिनिस्टर लोग हैं। मंत्री जो उचित सलाह दे राजा को निष्पक्ष भाव से। राज्य कोष नहीं है, धन नहीं है, भिक्षा मांगते रहते हैं, यह कर दो वह कर दो, भिक्षा मांग रहे हैं, धन कहां है? नागरिक नहीं है। पहले राजा का लोग पूजा करते थे, है? राजा का लोग पूजा करते थे। मुझे याद है कि हम लोग छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर का फोटो स्कूल में लगाया जाता था, जो ही प्राइम मिनिस्टर होता था। महात्मा गांधी का था ही, वो तो राष्ट्रपिता, लेकिन जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उनका फोटो, लेकिन आजकल वो भी नहीं लगाया जाता है। किसी स्कूल में लगाते हैं आजकल? नहीं लगाते हैं। पहले लोग पूजा करते थे, आपको याद है? आपके स्कूल में था ऐसा? नहीं। असीम आपको याद है? पहले प्राइम मिनिस्टर का, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का फोटो लगाते थे, महात्मा गांधी के बाद में, परंपरा था। आजकल कोई पूजा नहीं करता राजा का, लोग गाली देते हैं। पहले लोग गाली देते थे तो पीछे देते थे, आजकल मुंह पर गाली देते हैं। देखो टीवी पर कितना गाली देते हैं डेली, निज है? पुतला भी जला देते हैं। पेपर में कितना गाली देते हैं लोग, तो कैसी प्रजा है? तो 6 में से 1 भी अवयव ठीक नहीं है तो वह राज कैसे चलेगा? इसीलिए आज सब भगवान भरोसे चल रहा है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। भारत वर्ष में भगवान ही चलाते हैं, समय समय से भगवान आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य हम, भगवान चला रहे हैं। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि महाराज नाभि के राज्य में 6 के 6 लोग उपयुक्त थे। और पहले के राजा लोग अनासक्त होते थे, आसक्त नहीं होते थे। अब तो मरते दम तक कुर्सी पकड़े रहेंगे, कुर्सी टूट गया है कभी गिर सकता है, लेकिन पकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पहले के राजा लोग अनासक्त थे, आसक्ति नहीं थी। यदि उन्हें हिंट भी हो जाए, जान भी जाए, आजकल के राजा लोग जान जाए कि कोई व्यक्ति फेमस हो रहा है तो उसका पत्ता काटने में लग जाएंगे, कैसे इसको हटाओ है ना, बदनामी करो, जो करना है करो। यहां पर देखा जाता है विदित अनुरागम आप और यह प्रकृति ही जनपद राजा नाभि आत्मजम समय से तुरक्षाय अभिशिच्य। यहां पर देखा जाता है कि महाराज नाभि जब इस बात से विदित हो गए, उनको जब जानकारी हो गई यह बात कि मेरे बेटा को लोग बड़ा सम्मान करते हैं, बेटा को चाहते हैं। पीछे के श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से यदा कदा महाराज ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव कुछ चमत्कार भी किया करते थे हैं? ऐसे चमत्कार किए, जब इंद्र को ईर्ष्या हो गई वो वर्षा करना बंद कर दिया, तो भगवान ऋषभदेव ने क्या किया, अपने जोग बल से वर्षा बरसा दिया। तो स्वाभाविक है सब लोग उनको सम्मान करेंगे, सब लोग उनको प्रेम करेंगे। जब उनके लोकप्रियता के संबंध में जान गए कि सब लोग ऋषभ देव को सम्मान करते हैं, यहां पर तीन लोगों का वर्णन किया गया है, एक ब्यूरोक्रेट्स लोग, कार्य करने वाले लोग, एक मंत्री लोग और दूसरे प्रजा। ये तीनों लोग सम्मान करते थे ऋषभदेव को। महाराज दशरथ भी वैसे ही भगवान राम को राजा बनाना चाहते, क्यों देखे, वो भी देखे कैसे सब लोग भगवान राम का सम्मान करते हैं, वो देखे। बुद्धिमान वही होता है जो लक्षण से समझ जाए, सिम्टम जो होता है वह वस्तु के ज्ञान को देने के लिए होता है, सिम्टम से। भगवान विभिन्न प्रकार से सहायता करते हैं हम लोगों को सुखी रहने के लिए, लेकिन हम लोग उस सिम्टम को समझते नहीं हैं। जैसे मैं प्रायः कहा करता हूं कि जीवन भर कथा सुननी चाहिए, बचपन से जीवन भर भजन करना चाहिए, नहीं तो जब बाल पकने लगता है तो पहले बाल पकता है एक कनहटी से, एक कान के बगल में। आप लोग देखना, जब भी बाल पकने लगता है तो एक कान के बगल में बाल पकेगा, यहां पर। इसका मतलब है कि अब सुनना शुरू करो, बाल उजला हो रहा है, अब बुढ़े हो रहे हो, अब सुनना शुरू करो। भगवान एक लक्षण दिए हैं, लेकिन अब वो उजला हो रहा है तो काला करेंगे और अब सुनना नहीं चाहेंगे। एक एक अंग टूट रहा है, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, फिर भी सुनना नहीं चाहेंगे। हम लोग वास्तव में थेथर हो गए हैं, एकदम सेमलेस हो गए हैं, लेकिन पहले के राजा लोग ऐसे नहीं थे। लक्षण देख करके लोग समझते कि अब समय आ गया, लक्षण से। एक बार जैसे कहा जाता है कि शाम का जो परछाई होता है वो लंबा होता है, शाम का परछाई लंबा होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मृत्यु के समय आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। तो लक्षण से सावधान होना चाहिए। बहुत से लक्षण दिए गए प्रकृति में जिसे कि हम लोग इस बात को समझें, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। महाराज नाभि समझे और समझ करके पहला काम वे किए कि समझ गए कि मेरा पुत्र जो है वो सर्वमान्य होगा, इसीलिए उसको राजा बना दिया जाए। कौन प्रेसिडेंट बनकर के बैठा रहेगा मंदिर का, कितना हेडक है, कितना टेंशन है, राजा बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि अच्छा है। कोई चल रहा है और बिना भार लेकर के चल रहा है, और किसी पर 10 किलो का भार डाल दो या 20 किलो का भार डाल दो, कहो कि चलो, तो दोनों के चलने में थोड़ा ये हो जाएगा ना। ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अभी मैं मायापुर था तो हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो अपना गोविंदा जो पहले आया था वहां पर है, तो एक दिन वो मिल गया, वॉक कर रहे थे और हम दोनों चल रहे थे, वो हमसे फास्ट चल रहा था। मुझे आश्चर्य हो गया, सब लोग कहते हैं सबसे फास्ट मैं चलता हूं, ये मुझसे ही फास्ट चल रहा है, इसका मतलब क्या है? तब मुझे पता चला कि जब ट्रक खाली होता है, खाली ट्रक होता है तो बड़ा स्पीड में जाता है, लेकिन जब ट्रक लोडेड होता है तो थोड़ा स्लो जाता है। तो गोविंदा खाली ट्रक है और मैं लोडेड ट्रक हूं, थोड़ा भार बढ़ गया इसलिए थोड़ा स्पीड कम हो गया है, और कुछ नहीं। तो लक्षण देख करके समझ जाना चाहिए। राजा बनना ये लोडेड ट्रक के समान है, और अनलोड कर दो फर्स्ट क्लास, वजन करने में भी, कोई भी काम करने में। तो इसीलिए पहले के राजा लोग आसक्त नहीं हुआ करते थे, अनासक्त विषयान, अनासक्त रहते थे। इसीलिए वे लोग राजर्षि कहलाते थे, राजा और ऋषि राजर्षि थे। वे जानते थे कि हम केवल पोस्टमैन हैं, ये राज्य मेरा नहीं है, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। तो यह समझ कर करके अच्छा प्रतिनिधि अब मिल गया, चलो भजन करने चला जाए, तैयार हो गए। और एक बात का ध्यान जरूर रखे कि राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध है, जो सेतु है, वो टूटने ना पाए। और राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध है जैसे भगवान और भक्त के बीच में। तो भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है वह प्राप्त होता है कैसे? भक्ति के द्वारा। भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावन जस अस्मि तत्वतः। जैसा मैं हूं कोई जान सकता है तो मात्र भक्ति के द्वारा। और यदि भक्ति करना है तो भक्ति का प्रथम सोपान जो है वह है श्रवण। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावना संघ का स्थापना किए, किस लिए किए? श्रवण करने के लिए सुअवसर दिए, सब लोग आकर के सुने। हां ये जरूरी है, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि यू मस्ट हियर फ्रॉम ए बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों बोनाफाइड होना चाहिए। दोनों में से एक बोनाफाइड रहेगा तो काम नहीं चलेगा। सुनने वाले को भी बोनाफाइड होना जरूरी है। ये नहीं केवल सुनाने वाला ही शुद्ध भक्त रहे। सुनाने वाला शुद्ध भक्त रहेगा और सुनने वाला भी शुद्ध भक्त न रहेगा तो हरि कथा की मजा नहीं आएगी। और बोनाफाइड होने का मतलब क्या है? जैसा कि नैमिषारण्य के ऋषि लोग शुद्ध गोस्वामी से मिलकर कहते हैं कि हम लोगों को सुनने की लालसा है। जो लालसा जो है वही बोनाफाइड स्टेज है। जैसे जज और क्रिमिनल, जज और क्रिमिनल यदि दोनों बोनाफाइड रहेंगे तो उस ऑर्डर का कोई मीनिंग होगा। यदि कोई जज नहीं है, कोई जज नहीं है, बोनाफाइड जज नहीं है, और कोई क्रिमिनल कहता है मैं तुमको जीवन भर का कारावास दे रहा हूं, क्या मतलब उसका है? वो कारावास जज देगा ना। कोई ड्राइवर कहता है मैं तुमको जीवन भर कारावास दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। और यदि कोई क्रिमिनल नहीं है और जज कहे कि मैं तुम्हें जीवन भर कारावास दे रहा हूं, वह क्या मतलब है? तो दोनों बोनाफाइड होना चाहिए, बोनाफाइड क्रिमिनल होना चाहिए और बोनाफाइड जज होना चाहिए, तब उस जजमेंट का असर पड़ेगा, है ना? मैं ठीक कह रहा हूं? लो, यदि वो क्राइम किया ही नहीं है, यदि क्राइम नहीं किया तो जजमेंट डाल दोगे? ला, ये नहीं, ए, ए, ए कहां का ए, हो सकता है कि यदि कोई क्राइम नहीं किया है तो बोनाफाइड जज होगा तो वो प्रूव करेगा क्रिमिनल नहीं है, ये बोनाफाइड का मतलब है। यदि बोनाफाइड जज है और जो क्रिमिनल है वो भी कहता है तुम क्रिमिनल है, तो कुछ गड़बड़ जरूर है, या तो घूस लिया है या कुछ काम किया है, कुछ गड़बड़ जरूर है। बोनाफाइड का मतलब है बोनाफाइड। मैं एक पॉइंट यहां पर ला रहा था कि जब जज बोनाफाइड है, जज इज ऑथराइज एंड क्रिमिनल इज कन्विक्टेड, देन दैट लॉ हैज सम मीनिंग, अदरवाइज दैट लॉ हैज नो मीनिंग। लाइक टूडे, इफ यू वॉन्ट टू गो टू सेंट्रल जेल, विल दे अलाउ यू? एंड इफ यू आर अ क्रिमिनल, नो मैटर वेर यू रन, दे विल पिक यू अप। सो यू हैव टू बी क्रिमिनल फर्स्ट, not that he become criminal now, and judge had to go up high, then that law has some meaning. Same way, जो वक्ता है, जो गुरु है, वह बोनाफाइड हो, और जो श्रोता है वह जेन्युइन और सिंसियर हो, तब उस हरि कथा का आनंद आएगा। मत चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तो महाराज ना भी चाहते थे कि ये संस्कृति को मेंटेन किया जाए, संस्कृति को मेंटेन किया जाए, इसीलिए वे ब्राह्मणों को ब्राह्मणेशु उपनिधाय, उप मतलब नजदीक में और निधाय मतलब संरक्षण में या हाथ में, ब्राह्मणों के संरक्षण में या ब्राह्मणों के हाथ में ऋषभ देव ने महाराज नाभि अपने पुत्र ऋषभ देव को दे दिए। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति नष्ट न होने पावे, जो कि सेतु है, जो कि ब्रिज का काम करता है। वैदिक संस्कृति केवल प्रजा के लिए नहीं है, पहले तो राजा को फॉलो करना पड़ेगा। यदि राजा फॉलो करेगा तो प्रजा अपने आप करेगी। यदि आचरति श्रेष्ठा तत्त एव इतरतोचन। हां, मनुस्मृति इत्यादि में प्रण किया गया है कि राजा का एक्ट कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे शासन करना चाहिए, तो उसके लिए पहले राजा को स्वयं फॉलो करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट और भक्त के बीच में, लीडर और भक्त के बीच में जो सेतु है, इंस्ट्रक्शन उतना काम नहीं करेगा जितना आचरण काम करेगा। जो लीडर है, यदि वह सब प्रोग्राम में आ रहा है, और जो लीडर है वह भगवान की सेवा में अहर्निश लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि अन्य भक्त लोग हैं उसको देख करके कहना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप आएंगे, प्रभु जी आ रहे हम भी आएंगे है? तो ये सेतु का काम करेगा आचरण, आचरण बहुत जरूरी है। आचरण बहुत जरूरी है। तो उपनिधाय उनके स्वच्छता में रख दिए, यानी उपनिधाय का दूसरा अर्थ है उनके जैसे जबरदस्ती नहीं रख दिए, ये भी बात उपनिधाय का दूसरा है, वो जबरदस्ती नहीं रखे। ऐसा नहीं कि ऋषभ देव नहीं जाना चाहते थे और गए जाना पड़ेगा, जब तुम राजा बनोगे तो राजा बना दिए जाना पड़ेगा, नहीं, स्वेच्छा से। और ब्राह्मण लोग स्वीकार किए उपनिधाय, तो अपना अब काम कर लिए, एक उचित राजा को स्थापित कर दिए। प्रभुपाद जी यहां पर तात्पर्य में बतलाए हैं कि किस प्रकार से समाज चल सकता है। भगवान निर्माण किए चातुर वर्णमया सृष्ट गुणकर्म स्वभाव ज, सबका अपना अपना स्वभाव होता है और स्वभाव के अनुसार वे लोग कार्य करते हैं। तो ब्राह्मण का स्वभाव है, पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह, पठन पाठन उचित चिद का अध्ययन करना, अपने जीवन में उतारना और उसको दूसरे को बताना। इसलिए ऋषभ देव को वे रखे उन लोगों के स्वच्छता में। ये समाज के अंग हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय हो क्षत्रिय रहो, वैश्य हो वैश्य रहो, शूद्र हो शूद्र रहो, कुछ चेंज नहीं करना है। ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ है गृहस्थ रहो, वानप्रस्थ वानप्रस्थ रहो, सन्यासी है सन्यासी रहो, कुछ चेंज नहीं करना है। क्या करना है? धर्म सेतु को मेंटेन करना है, उसको मेंटेन करना है। हम लोग वो सेतु को तोड़ दिए हैं आज, तो राजा उधर और प्रजा इधर दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन सेतु नहीं है, वो ब्रिज नहीं है, वैदिक संस्कृति नहीं है। क्या कर्तव्य है राजा का, क्या कर्तव्य है प्रजा का, वो अज्ञान नहीं है और बताने वाला भी नहीं है आज, बताने वाला भी नहीं है आज। और यदि कोई बताने वाला है भी तो सुनना नहीं चाहते हैं लोग। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित कर दिया जाए, लॉ बुक बना दिया जाए, आई मीन कई एक परपट इतने अच्छे से प्रभुपाद जी दिए हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो आज राज्य में कैसे राजा राज्य को चला सकता है, गाइडलाइन प्रभुपाद जी दिए हैं राजर्षि के रूप में, और उसका कोई पालन करे तो रियली इट विल बी बेनिफिशियरी, प्रजा के लिए भी सबके लिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इस समाज के, कौन कोई बात कर रहा है फोन पर, क्या इधर सिक्योरिटी कोई फोन पर बात कर रहा है, उधर देखो मैं सुन पाता हूं, तू ही सुनता है। पहले इन लोगों को बड़ा सम्मान से, ब्राह्मण लोगों को लोग कहते हैं पंडित जी, क्षत्रिय को कहते थे ठाकुर जी, वैश्यों को कहते सेठ जी और शूद्रों को चौधरी जी। सम्मान, एक शरीर के अंग हैं, सिर हाथ पेट और पैर। लेकिन आज के समाज में जहां पर सेतु नहीं है, सिर काटकर उधर फेंक दिया गया, हाथ उधर पेट उधर, और शरीर कैसा है, अंग भंग शरीर हो गया है, ये नहीं रह चुका है, लेकिन पहले ऐसा था। इसीलिए महाराज नाभि ऋषभ देव को ब्राह्मणों की स्वच्छता में रख करके गए, गए बद्रिकाश्रम, जीवन को चार भागों में बांटा गया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और वानप्रस्थ अवस्था को प्राप्त किए और बद्रिका आश्रम गए। भजन करना है तो वन में जाना चाहिए, वनम गतो यद हरि माश्रये, तो वन में जाकर के हरि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो वे गए, यहां पर शब्द आया हुआ है विशाल आयाम, बद्रिका आश्रम गए, जहां पर बड़े बड़े लोग तपस्या किए थे, उस स्थान को विशाल आयाम कहा गया है। भगवान स्वयं तपस्या किए थे नर नारायण ऋषि के रूप में, तो वहां गए तपस्या करने के लिए। निपुणेन तपसा समाधि योगेन, प्रसन्न निपुणेन, प्रभुपाद जी इस बात को भी टच किए हैं कि प्रसन्नता से गए थे, घर से निकाल नहीं दिए गए थे महाराज ना भी। ऐसा नहीं था कि ऋषभदेव डंडा मारकर उनको घर से निकाल दिया कि तुम चले जाओ तो जाकर के तपस्या करने लगे, नहीं, प्रसन्न मन से घर छोड़कर गए थे और प्रसन्न भाव से तपस्या कर रहे थे। भगवान का भजन कोई करता है तो जरूर प्रसन्न रहेगा, भगवान के भजन का यह गुण है, केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निथाय। आनंद की प्राप्ति होती है जो चाहता है वो महाप्रभु, चेतन महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का सुदृढ़ निश्चय करी, निश्चयता पूर्वक कोई दी भगवान का भजन करे, भगवान नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नाम लेकर के हम प्रसन्न हो सकते हैं। कलयुग में यही तपस्या है, नाम लेना, 16 माला जप करना बहुत बड़ी तपस्या है, ऑर्डिनरी तपस्या नहीं है। जो भी नाम जप करना चाहता है, चैतन्य महाप्रभु क्वालिफिकेशन बताए हैं नाम जप करने का, कोई जानता है? शिष्टाष्टक का तीसरा श्लोक है, क्या है तीसरा श्लोक शिष्टाष्टक का? वो तो दूसरा है, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी। जो निरंतर नाम जप करना चाहता है उसको नम्र होना बहुत जरूरी है। और नम्रता कैसे आएगी? भक्ति रसामृत महाराज और मैं, हम लोग बैठे थे मायापुर में ही बात कर रहे थे कि नम्रता कैसे आएगी। नम्रता आएगी नमस्कार करने से। नम धातु, नम का मतलब होता है झुकना, नम धातु से आया हुआ है क्या? नमस्कार, नमस्ते। और नम धातु से ही नाम आया है, नमयति इति नाम, जो झुका दे उसे नाम कहते हैं। तो नम मतलब झुकना। त्रिणादपि सुनिचे ना, फल युक्त वृक्ष क्या झुक जाता है, तो झुकना पड़ेगा। ये नमस्कार करना वैष्णव पद्धति में जो है, हम लोग वांछा कल्प तरफ से कहते हैं, अभी खड़े खड़े लोग दंडवत बोल देते हैं, दंडवत प्रभु, दंडवत का मतलब दंडवत, दंडा के समान, अभी शॉर्ट कट दंडवत प्रभु, तो नम्रता कहां से आएगी? दंडवत करने सिर ऊपर करते हैं, अरे नमस्ते मतलब नीचे, नमस्ते मतलब नीचे, नमस्कार है? पता नहीं कहां से दंडवत आ गया। मैं भी कहता हूं मैं उससे बचा नहीं हूं, क्योंकि आदत पड़ गई है ना। मान लो दंडवत कह दिया और मर गया, तब कहां जाओगे, किस लोक में जाओगे? दंडवत लोक में। अरे हरे कृष्ण बोलकर मर गया तो कम से कम भगवान के पास जाएंगे। एनीवे, मैं नम्रता का बात कर रहा था कि नम्रता से नाम हो सकता है, और नम्रता प्राप्त होती है नमः झुक कर करके, यानी प्रणाम कर करके। तो वैष्णवों को प्रणाम करना भगवान को प्रणाम करना, नाम प्रभु को प्रणाम करना, जयति जयति नामा आनंद रूपम मुरारे विरमित निधर्म ध्यान पूजा दियत्नम कथमपि सुकृतम प्राणिनाम जप परामृत एकम जीवनम भूषणम में। ऐसा के रूप गोस्वामी कहते हैं, हे नाम प्रभु आपका जय हो जय हो जय हो, जयति जयति नाम आनंद रूपम मुरारे विरमित निधर्म ध्यान पूजा दियत्नम। मैं आपके लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, अपना धर्म ध्यान पूजा सब कुछ। कथम अपि सुकृतम प्राणी नाम जप, जब धर्म पूजा त्यागने के लिए तैयार हूं तो प्राणियों के लिए सुकृति करना, हॉस्पिटल खोलना, फूड फॉर लाइफ चलाना, ये कहना ही क्या है, सब छोड़ दूंगा। परम अमृत एकम जीवनम भूषणम में, मेरे जीवन के आभूषण एकमात्र आप ही हो, मैं आपको ही धारण करना चाहता हूं। इसके लिए नम्रता बहुत जरूरी है। नाम, जो नाम लेता है वह भी झुक जाता है और जिसका नाम लिया जाता है वह भी झुक जाता है। नमयति इति नाम, जो झुका दे, जो नाम लेता है वह भी नम्र हो जाता है और जिसका नाम लिया जाता है वो भी नम्र हो जाता है। दोनों नम्र हो जाते हैं, कृष्ण भी नम्र हो जाते हैं और भक्त भी। और वैसे परिस्थिति में अहर्निश यह नाम लिया जा सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज नाभि प्रसन्न भाव से समाधि योग में अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योगे ना, मतलब अष्टांग योग का ये करते हुए भगवान वासुदेव जिनका नाम नर नारायण है उनका उपासना की, कालेन तन महिमान वाप। महिमान शब्द का व्याख्या आचार्य लोग किए हैं, प्रभुपाद जी भी यहां पर किए हैं। महिमान का अर्थ यहां पर बताया गया, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक को यदि वैदिक जीवन यही वैदिक पद्धति है। इस प्रसंग में तन महिमान अवाप सब अतन भवन है, श्री श्री स्वामी का कहना है कि महिमा का अर्थ जीवन से मुक्ति है। तो जो इस पद को प्राप्त कर लेता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त का परिभाषा बताया गया है, यहां जस्य हरेर्दासो कर्मणामनुसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त सोचते। बादरपुर स्वामी भक्त स्वामी सिंधु में जीवन मुक्त का परिभाषा कहते हैं, यहां जस्य हरेर्दासो कर्मणामनुसा गिरा, जो मन से वाणी से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, जिसका तीनों भगवान की सेवा में लग गया है वह व्यक्ति जीवन मुक्त है, वह जीवन मुक्त है। तीनों साथ में लगना चाहिए, जब तीनों एक साथ लग जाएगा तो भगवान कहीं भी रहेंगे उसके पास चले आएंगे। कई एक उदाहरण है, द्रौपदी जब उसका मनसा वाचा कर्मणा तीनों लग गया भगवान द्वारका से आ गए। कृष्ण यशोदा मैया जब मथनी मह रही थी कृष्ण सोए हुए थे, जब मनसा वाचा कर्मणा लग गया कृष्ण सो नहीं पाए, उठ करके भाग कर आ गए, मैया को पकड़ लिए, बस हो गया। वह जीवन मुक्त है। प्रभुपाद जी यहां पर वीर राघव गोस्वामी की कमेंट्री से प्रस्तुत किए हैं छंदोग्य उपनिषद से कि वो जीवन मुक्त होते हैं, है? उनके आठ गुण होते हैं, तो मैं इसको टच करूंगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर, बाद में क्लास, आज 9:30 बजे तक क्लास में संडे। तो पहला गुण है, पहला लक्षण है जो जीवन मुक्त है उसका, वह है अपहत पाप। अप मतलब खत्म हो जाना, और अपहत मतलब खत्म हो जाना, पाप मतलब पाप, जो पाप से शून्य हो, पाप विहीन हो, वह जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त वह है जो कोई पाप नहीं करता है। और प्रभुपाद जी, पाप तो बहुत है, कलो दोषी निधि राजन, निधि है संसार। लेकिन प्रभुपाद जी इसमें से चार को डिफाइन किए हैं। मांसाहार करना बड़ा पाप है, जो जीवन मुक्त हैं वो मांसाहार नहीं करते हैं। प्राय स्त्री या प्राय पुरुष से अवैध संबंध रखना ये पाप है। धूम्रपान करना ये पाप है, और जुआ ताश चौपड़ खेलना ये पाप है। तो जो जीवन मुक्त हैं वे लोग इससे परे होते हैं। बिजरो, जो जीवन मुक्त लोग हैं वो कभी बुढ़े होते ही नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा किसकी है? शरीर की है। आत्मा बुढ़ा नहीं होता है, वो तो नवजौवनम च, भगवान नवजौवन है और आत्मा भी नौजवान है, तो हमेशा नौजवान ही रहते हैं। प्रभुपाद जी 80 प्लस ईयर में भी नौजवान थे। प्रभुपाद जो काम किए कहां हम लोग कर पाएंगे। जीवन मुक्त का लक्षण देख सकते हैं। परिस्थितियां आई, विकट परिस्थितियां आई, लेकिन उससे घबराते नहीं है जीवन मुक्त लोग, बल्कि उन प्रश्नों पर पैर रख करके आगे चले जाते हैं। तो बिजरो, बुढ़ापा के दुख से जो परे हैं। जो वैद्यराज थे, प्रभुपाद जी का ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं स्वामी जी कैसे अभी तक जीवित हैं, इनके शरीर में इतना दुख है, इतना दुख है, फिर भी इन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी जीवन मुक्त हैं। इतना दुख होने के बाद भी उन्हें कोई उसका ये नहीं था। भी मृत्यु, जो मृत्यु से परे होने के लिए तैयार रहता है, जो तत्पर है, यानी मृत्यु जिसका स्पर्श नहीं कर सकती है, ये तीसरा गुण है, यानी जो पुनः शरीर न धारण करे। क्योंकि मृत्यु जो होती है वह शरीर की होती है, और ब्री मृत्यु जो मृत्यु से परे है, यानी कोई शरीर धारण न करे, भौतिक शरीर। विश्व का जो सुख और दुख से जो पड़े है वह अभिशोक है। कैसे है, भगवत गीता में कई एक श्लोक बताया गया है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जय जो। हाँ, तो विश्व का जो दुख सुख से परे हो, विजय गत्साम, जो भौतिक भोग की कामनाओं से परे हो, उसे कोई, जैसे महाराज युधिष्ठिर से अपिपलह धर्म राजा पितृवत्रंजना प्रभु निष्प्रिय सर्व कामे भो, निष्प्रिय कोई स्प्रिया नहीं है संसार को भोगने का या संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने का, एक्युमुलेशन का। अपिपातः, उनका एकमात्र इच्छा रहता है कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, चाहे मैं प्रसन्न रहूं या न रहूं, भगवान प्रसन्न हो। ये जीवन मुक्त का लक्षण है। हम लोग समझते हैं हम प्रसन्न रहे भगवान जंड में जाए, ये जीवन मुक्त का लक्षण नहीं है। सातवां है सत्य कर्मा, उनकी वही इच्छा होती है जो भगवान की इच्छा होती है, भगवान से उनकी अलग कोई इच्छा नहीं होती है। और सत्य संकल्प, यदि कोई इच्छा हो भी गई तो भगवान उस इच्छाओं को पूरा करते हैं। इस संबंध में रघुनाथदास गोस्वामी का मैं उदाहरण देता हूं। जब रघुनाथदास गोस्वामी राधा कुंड में निवास करते थे, तो एक दिन की उनकी इच्छा हो गई। हालांकि पहले वो इच्छा करते नहीं जीवन मुक्त लोग, यदि इच्छा कर भी देते हैं वही भगवान की सेवा के लिए, तो उनकी इच्छा हो गई कि यदि मेरे पास धन होता तो मैं बहुत सुंदर राधा कुंड और श्याम कुंड के लिए घाट का निर्माण कराता। केवल मात्र इच्छा हुई, और जब बाद में रियलाइज किया, अरे मैं ऐसा इच्छा कैसे कर लिया, मैं बैरागी, सब कुछ छोड़ करके आया और ऐसा इच्छा कर लिया, उन्हें ग्लानि होने लगी। तो बस वो तो मात्र इच्छा किए, भक्त तो मांगते नहीं है, इच्छा करते नहीं, भगवान तो वेटिंग करते हैं कब इच्छा करे। केवल इच्छा किए और भगवान पूरा कर दिए। एक सौदागर जा रहे थे धन लेकर के बद्रिकाश्रम नर नारायण का सेवा करने के लिए, और स्वप्न हुआ कि तुम धन लेकर जाओ राधा कुंड पर, वहां हमारा एक भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी, उसको ये धन दो, वो हमारा सेवा करना चाहता है, मुझमें और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है। मैं एकमात्र इच्छा किए, इसलिए वैष्णवों को कल्प वांछा कल्प तरुभ्यश्च, ये कल्प वृक्ष के समान, इच्छा मात्र किए भगवान सप्लाई कर देते हैं, इच्छा मात्र से। तो ये जीवन मुक्त के लक्षण है, और जीवन मुक्त मतलब जो बैकुंठ जाने का योग्य पात्र है वह जीवन मुक्त कहलाता है। तो भगवान वासुदेव का भजन कर करके महाराज नाभि और मेरुदेवी महिमानम बैकुंठ जाने के योग्य हो गए, जीवन मुक्त हो गए। तो प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का स्थापना किए हैं जीवन मुक्त बनाने के लिए। हम सब लोग जीवन मुक्त बन सकते हैं, सबके लिए अवसर है। यहां हम देखते हैं कि महाराज नाभि और मेरु देवी बहुत बड़ा बड़ा तपस्या किए जीवन मुक्त करने के लिए, और प्रभुपाद जी सिंपल कहते हैं फॉलो फॉर अग्रेड प्रिंसिपल चांद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। यदि हम इतना ही करेंगे, चार नियम का पालन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप जितना हो सके, 16 माला मिनिमम है, जितना हो सके तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। जीवन मुक्ति का यही क्वालिफिकेशन है, चार नियम का पालन और 16 माला का जप। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? माइक बोलो। इनका प्रश्न है साधन और साधना में अंतर क्या है। अभी आधा घंटा में इसका पता चल जाएगा। प्रसाद और प्रसाद खाने में अंतर क्या है? प्रसाद जो बना हुआ है और खाना मतलब। तो हरे कृष्ण महामंत्र साधन है, मंगला आरती में आना साधन है भगवान के नजदीक जाने का, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, मंगला आरती आना, ये साधना है। समझिए ना, भगवान से नजदीक प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, रास्ता क्या है? साधन मतलब रास्ता, मोटर गाड़ी साधन है ना यहां से वहां जाने का, और साधना मतलब मोटर गाड़ी में बैठो और चलो वहां पहुंचो। साधना करना, मोटर चलाना पड़ेगा, डीजल डालो उसमें, पेट्रोल डालो, टायर में हवा है कि नहीं देखना, ये सब साधना है। साधन मोटर गाड़ी है, वैसा ही साधन है 16 माला जप करना, चार नियम का पालन करना, वैधी भक्त करना, ये साधन है। लेकिन ये ईच इंडिविजुअल को करना उससे, ये साधना है। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी। चार युग में जो चार प्रक्रिया अलग अलग है भगवान को प्राप्त करने की, उसमें कलयुग में सबसे,
मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं कि आप क्या बोल रहे हैं।
कलयुग की जो प्रोसेस है और बाकी के युग में बहुत लंबा पीरियड था, जैसे 25,000 साल या 50,000 साल तक सब करना पड़ता था, और कलयुग की लाइफ ही खाली 60-70 साल है, तो ये प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से क्यों पावरफुल है?
क्योंकि जीवन की आयु छोटी है। पहले जीवन था बहुत ज्यादा दिन तक, कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम मृतामुखे द्वापरे परचर्यायाम कलौ तधर कीर्तनम, लोग करते थे, लेकिन कलयुग में नहीं कर पाएंगे। कलयुग के लोग कैसे हैं, लेजी बम हैं। मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है, अल्पायुष सम्या कला उस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपदुता। मंदा सुमंद मत बम लेजी। कलयुग में कितने लोग लेजी हो गए हैं ये समझिए ना। अरे कलयुग में डे बाय डे लोग लेजी होते जा रहे हैं। वो कैलाश चंद्र प्रभु कहां, इधर आए, इधर उधर बैठता है। जब वो लाइफ मर्शिप में था उसको परेशान लोग करते थे कि तू बस से जाओ या ट्रेन से जाओ लाइफ मर बनाने के लिए, और यहां से जाओ बिले पार्ला बस पकड़ो, वहां से जाओ ट्रेन पकड़ने के लिए है? अभी यहां से जुहू मार्केट जाना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी चाहिए। अंधेरी स्टेशन जाना मुश्किल हो जाता है। मंदा सुमंद मत, लाइफ इज बिकमिंग टफ डे बाय डे, भगवान जानते थे। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए सरल तरीका होता है, चलो कैसे भी। और उतना ही नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत कंसेशन भी दे दिया गया है, खाईते पीते सुईते यथा तथा नाम लोय देश काले नियम नाई सर्व सिद्धि है। अरे नाम तो लो, खाते समय लो, सोते समय लो, मरते समय भी लो, लेकिन लो तो नाम। कितना भगवान आसान बना दिए कि नाम लो, कोई नियम नहीं है, जान में अनजान में कैसे भी लो, गिर रहे हो तभी हरे कृष्ण तभी कल्याण हो जाएगा। कितनी नाम की महिमा है, फिर भी नहीं नाम लिया जा रहा है। अब समझ सकते हम लोग कितने पापी हो गए हैं कलयुग में कि नाम नहीं निकल, दिन भर बकवास करेंगे, पाए 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 दिन भर करते रहेंगे, लेकिन नाम लेना होगा तो होगा नहीं।
तो मेरा यही कहना है तामसिक स्टेज से जो चालू किया उसका रिजल्ट जल्दी आता है, और नाभि जैसे राजा तो सात्विक थे तो उनको इतना साल क्यों लगता है, हजारों साल।
ये भगवान की कृपा है। जैसे आपके चार बच्चे हैं, एक अपाहिज है, मान लीजिए है नहीं, मान लीजिए एक अपाहिज बच्चा है और एक बिल्कुल स्वस्थ है, तो यदि खाना खिलाना होगा तो पहले आप अपाहिज को खिलाओगे, यही करेंगे ना। जो स्वस्थ है उसका तुम बाद में खाना, तो कोई वैसा ही करे, वो तो स्वस्थ है उसको पहले नहीं खिला रहे हो, जो अपाहिज हो खिला रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो कलयुग में सब अपाहिज हो गए हैं, तो भगवान कहे ठीक है जल्दी से खा लो, पहले तुमको खिलाता हूं, जल्दी जल्दी चलो। सजीव वाले ठीक है, चंगे हैं।
हरे कृष्ण
है,
हरे कृष्ण,
माइक इज राइट हियर, माइक जोर से बोलो।
आज जो क्लास में जो हुआ बहुत अच्छा क्लास लगा मुझे, बहुत अच्छा प्रेम
मुझे
लगा।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है सही में।
मैं बोल रहा हूँ कि भक्त से भक्त का मन में क्यों क्रोध आते हैं, जो कुछ भक्त देखने के बाद क्रोधित होता है, साथ साथ कोई सच बोलने के बाद भी क्रोधित होता है, ऐसे क्या आते हैं? अब बोला जब मंगला आरती आने के बाद ठीक होता है वही ठीक है, और चैंटिंग क्लास में बैठे वही ठीक है, और भागवत क्लास में बैठे वही ठीक है, लेकिन क्रोधित तो क्या होता है जो अन्य भक्त देखता है ऐसे जो क्रोधित, ऐसा क्या होता है? ये तो भक्त का लक्षण है। अब बोला कि नम्रता भाव से सब ठीक होता है, नम्रता भाव क्यों नहीं?
बिना माइक के बोलोगे शायद मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? बोलिए क्या 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 बोले, हमारे ट्रांसलेटर हैं, माइक ट्रांसलेटर। अब यदि चोर कहे कि पुलिस वाले डांटते क्यों हैं हमको, पुलिस वालों का काम ही है डांटना, पुलिस वालों से कौन डरता है? जो अपराधी होता है ना, जो अपराधी होता है वो पुलिस वालों से डरता है, जो गलती किया होता है वो डरता है। तो वैसे ही यदि टेम्पल कमांडर और प्रेसिडेंट कोई यदि डांटता है तो इसको दो प्रकार से लिया जा सकता है. एक तो यह है कि हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं, पॉजिटिव रूप से लो. यदि किसी पर एक उंगली कर रहे हो तो मत बोलो कि तीन उंगली अपने तरफ है. यदि कोई डांटता है तो पॉजिटिवली लो कि हमारे भलाई के लिए हो सकता है. हो सकता है अभी मैं गलती ना किया, पहले कभी गलती किया होगा. कर्म फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा ना, कर्म फल सबको भोगना पड़ेगा. अच्छा है क्रोध आना, खराब थोड़े है. क्रोध आना अच्छा है, खराब नहीं है. अरे हनुमान जी को क्रोध नहीं होता तो लंका थोड़ी जलता है, अर्जुन को क्रोध नहीं तो महाभारत थोड़ा होता है. साधु बनने का मतलब नहीं क्रोध खत्म कर दो. तू गलती करो फिर देखना मैं क्या कर सकता हूं. क्रोध करना खराब नहीं है, क्रोध रखना चाहिए, लेकिन हमेशा यूज मत करो, दुर्वासा मुनि बन जाओगे. टाइम टाइम से जब गलती कोई करता है तब क्रोध जरूरी है भगवान की सेवा के लिए. प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग समझते हैं कि हम हरे कृष्ण वाले हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, हम लोग चीटिंग कर लेंगे. वी आर नॉट फुल. क्यों नहीं क्रोध करेंगे? तो भगवान गाली दोगे, हम क्रोध नहीं करेंगे. तो भगवान का भगवान निराकार है, उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हम तुमको छोड़ देंगे. प्रभुपाद जी वाज टेरर, ही वाज चेतन महाप्रभु. जगाई मधाई के लिए उठा दिए, देखो दर्शन चक्र उठा दिए, सबसे महावदान्य है. तो क्रोध करना खराब नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये देखना जरूरी है. अपने लिए नहीं, दूसरे कल्याण के लिए. मैं जानता हूं तुम्हारा मैनेजरियल प्रश्न है, तुम सुबह से ही डिस्टर्ब हो. मुझसे मंगलारती में ही पूछा, तू ऑफिस में आना, बताऊंगा बाद में. और कोई प्रश्न? भगवान जैसा चाहे. आशिष्य वापादरताम विनश्रुमाम अदर्शनम मरमहताम करो तुबा यथा तथा वा विद्धा तुलम पटो मत प्राणस्तु स एव नापर. उसका अपना इंडिपेंडेंट डिजायर नहीं होता है. भगवान ने अर्जुन कहा तुम मूर्ख बन जाओ, अज्ञानी बन जाओ. अर्जुन बन गया अज्ञानी, कोई बात नहीं मूर्ख रहूंगा. चलो भगवान गाली भी दिए तो हिंजड़ा हो गया अर्जुन. क्रव्य मास्म पार्थ असच्यानंद सोचस्व प्रज्ञावादांश भाते गदासु अग्दासुंच नाम चंदी पंडिता है. तो भक्त लोग भगवान के लिए कुछ भी बनने के लिए तैयार होते हैं. भगवान की इच्छा है जीवन मुक्त को कि तू बन जाओ जीवन बद्ध, तो बन जाएगा भक्त, कोई बात नहीं. लेकिन भगवान को भूलेगा नहीं, अंतर इतना ही है, वो भूलेगा नहीं. भगवान का हमेशा स्मरण करता है भगवान. जगह देखिए ना, जय और विजय, जय विजय. असुर बन गए थे लेकिन भगवान को भूले नहीं थे, 24 आवर याद करते थे. नारद जी को मानना पड़ा कि प्रतिकूल भाव की भक्ति कहीं ज्यादा है अनुकूल भाव की भक्ति से. अनुकूल भाव में कभी कभी सो जाते हैं, प्रतिकूल भाव में 24 आवर जगह रहता है. कृष्ण इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, चिंतन ज्यादा होता है. तो भक्त लोग भगवान के इच्छा पर, जैसा भगवान की इच्छा हो, भक्त लोग करने को तैयार होते. और कोई प्रश्न? हाँ एक बार एक हमको लगता है आपको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए मंदिर का, सब ठीक हो जाएगा. यहां तक नींद का बात है, मैं अपने कथा में कहा करता हूं, ये सत्य घटना है. जब कुंभकर्ण मारा गया ना, कुंभकर्ण मारा गया तो भगवान राम के चरणों में आया निद्रा देवी. निद्रा देवी आई कि प्रभु अब तो कुंभकर्ण को आपने मार दिया, अब मेरा कहां होगा, अब मैं कहां जाऊंगी. तो भगवान राम ने कहा जहां मेरी कथा होती हो तो वहां चले जाना. समझ गया, भगवान राम का आशीर्वाद है निद्रा देवी को, तो चली आती है, तकलीफ क्या इसमें है। अब डिसाइड आपको करना है कि कुंभकर्ण बनना चाहते हो कि हनुमान जी बनना चाहते हो। यदि हनुमान जी बनना चाहते हो तो जगे रहो, कुंभकर्ण बनना चाहते हो सो। मैं जानता हूं ये ठीक कह रहा था, एक भक्त मैं देखा उठकर चला, पप्पू क्या नाम, पप्पू का नाम क्या है ऋचा का, नेपाली लड़का पप्पू है उसका, पहले का ही नाम याद है, पुरुष भूषण। कथा शुरू हुआ, दो झटका मारा फिर चल दिया, पता नहीं कहां चला गया, हलवा बांटने गया, ये खाने गया पता नहीं, पुरुष भूषण। ठीक तो बात ठीक कहा। और कोई प्रश्न? प्रश्न वही होनी चाहिए जो कथा में कहा जाए, इधर का उधर का प्रश्न कहोगे तो प्रसाद भी नहीं मिल पाएगा। हाँ बिल्कुल बनाइए, भक्तों को जाना चाहिए अपना संग देने के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप संग लेने चले जाओ वहां पर। संग देने जाओ ठीक है, मंत्रियों को बनाओ कृष्ण महानुभावित जरूर बनाओ, राजा को होना चाहिए नरदेव राजर्षि बताना चाहिए, जरूर कीजिए। हम भगवान से प्रार्थना करें हम वह शक्ति दें, जाकर प्रचार करो उधर। अभी लंदन का एक आया था मिनिस्टर, वो क्या सुंदर बात मायापुर में है, तो वो कह रहा था, प्रभुपाद जी का बहुत किताब पढ़ा है, भक्त है, तो कह रहा था कि एक बार दिवाली के समय मैं न्यूयॉर्क में गया था और मेरी इच्छा थी कि आज मुझे प्रसाद मिल जाए, उसकी दो इच्छा थी कि आज मुझे मंदिर का प्रसाद मिले, इस्कान का मंदिर का प्रसाद मिले, और वह चाहता था वो टेम्पटन स्क्वायर पार्क जहां से प्रभुपाद जी शुरू किए थे देखना चाहता था। तो होटल रूम से बाहर निकला तो आ गया, थोड़े से रोड पर चलते चलते तो आगे भक्त लोग फूड फॉर लाइफ प्रसाद वितरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो लाइन में लग गया, लाइन में लग गया तो उसे प्रसाद मिल गया, प्रसाद खा लिया, एक इच्छा पूरा हो गया। वो भक्त से पूछा कि प्रभुपाद जी कहां से इस्कान का प्रचार शुरू किए थे अमेरिका में, वो टम्पकन स्क्वायर पार्क किधर है, तो कहा कि यही बगल में यही पेड़ है जहां प्रभुपाद जी शुरू किए थे, तो कहा कि हमारा दोनों इच्छा पूरा हो गया, हमारी इच्छा थी, प्रभुपाद ने हमारा इच्छा दोनों पूरा कर दिया। तो बाद में मैं और हमारा एक भक्त लंदन का जो गौरी प्रभु हम बात कर रहे थे, भक्त चारू महाराज हम बात कर रहे थे, महाराज ये देखो मिनिस्टर है कितना सुंदर बात कर रहा है, प्रभुपाद जी से बात कर रहा है, चले इंडियन मिनिस्टर कितना ही पढ़ाओ उनके दिमाग में जाता ही नहीं है, उनके दिमाग में गीता भागवत नहीं जाएगा, करप्शन केवल जाएगा। चलो प्रचार करो आयुष्मान भव, चलो प्रचार करो, भक्त बनाओ। और कोई प्रश्न? माताजी लोग कोई प्रश्न है? महाप्रसादे गोविंद, यही ना अंतिम प्रश्न। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।